सीजन 1 एपिसोड 3। हे गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ बी फॉर बिलियनर्स एंड होप कि आपने जो पिछले दो एपिसोड में प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको अच्छे से अप्लाई किया होगा और आपको रिजल्ट अभी नहीं तो दिखने वाले होंगे अगर आप उनको अच्छे से अप्लाई कर रहे होंगे। सो हियर आई एम बैक विद द थर्ड स्टेप टूवर्ड रिजल्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द थर्ड स्टेप में ऑथर जो हमें करने बोलते हैं कि ऑटो सजेशन मतलब आप एक तरीके का सेल्फ टॉक ही मान लीजिए। मतलब उसमें हमको खुद को ऐसे ऐसे सजेशन देने अपने गोल्स से रिलेटेड जो बिल्कुल पॉजिटिव हो, जिनमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना हो, और बिल्कुल इतने फेथ के साथ उनको बोलना है, खुद को सजेस्ट करना है, बिलीफ के साथ उनको बहुत अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड करना है। तो ऑटो सजेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे अपन उनको सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो ऑटो सजेशन के लिए आपको जो पहले दो टेक्निक्स दी थी, गोल सेटिंग, वो भी एक टाइप ऑफ ऑटो सजेशन ही है। उसमें आप जो गोल्स रीड करते हैं, अपने आप की पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या है, वो भी एक ऑटो सजेशन ही है। और जो फेथ वाला था, वो फेथ के साथ मिक्स करके और पूरा लव और पूरा वो मिक्सचर बना के उसके साथ बोलने को बोला था। तो इससे क्या होता है कि मतलब ये जो इमोशंस थे जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, इमोशंस थे, वो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी ग्रैप कर लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड का ग्रैप करने का रीज़न ये है कि आप अगर सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली पूरा सजेस्ट करने लगता है कि आपको गोल्स के रिलेटेड आपको न्यू आइडियाज़ आने लगते हैं, आप क्रिएटिव तरीके निकाल लेते हैं चीज़ों को करने के लिए, आप गोल्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपके गोल्स के लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो इससे आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसलिए आपको ऑटो सजेशन करना चाहिए। तो ऑटो सजेशन वो ही है जो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद से ऐसी पॉजिटिविटी बातें करना। सो ये थर्ड स्टेप का चैप्टर बहुत ही छोटा था तो मैं आपको फोर्थ स्टेप भी इसी में इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ। तो फोर्थ स्टेप में ऑथर जो हमें बोलते हैं वो है स्पेशलाइज नॉलेज। अब स्पेशलाइज नॉलेज से ऑथर का ये मतलब है कि लाइक हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा फील्ड के बारे में नॉलेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, आपको मार्स पे जाना है, आपको पूरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ऑथर ये कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज हो। आप जिन लोगों को नॉलेज है आप उनको अपने साथ लग के उनको अच्छे से यूटिलाइज करके भी अपना काम निकला सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, जैसे वो आपको पूरी एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी थी तो उसका टाइम स्पेन सेव हो जाएगा पूरा, और आप और दूसरी चीज़ों कर सकते हो और नए क्रिएटिव चीज़ें सोच सकते हो उसी में, और आपकी एफिशिएंसी भी कम नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो बंदे हैं जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है। तो आपका नॉलेज भी उतना ही हो जाएगा जितना उनका नॉलेज है, क्योंकि आपको एडवाइस कौन कर रहा है, आपके साथ कौन है, वो लोग जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है। तो इससे रिलेटेड ऑथर हमें एक स्टोरी भी बताते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है एंड्रयू कार्नेगी की। तो एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने एंड्रयू कार्नेगी को बोल दिया कि भाई ये अनपढ़ है, ये गवार है, इसको कुछ भी नहीं आता है। तो एंड्रयू कार्नेगी ने उन रिपोर्टर्स के अगेन केस फाइल कर दिया कि ऐसा कैसा बोल रहे। तो रिपोर्टर ने उस बात को कोर्ट के सामने प्रूफ करने के लिए एंड्रयू कार्नेगी से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे कि आप बताइए ब्लैक फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, डेट क्या थी, उस वॉर में कौन जीता था, ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड और अलग अलग फील्ड के क्वेश्चन पूछे। तो फिर एंड्रयू कार्नेगी ने बस एक बात बोली कि मेरी टेबल है जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ बहुत सारे बटन्स हैं और उसमें एक रेड वाला बटन है, तो जिस अगर मैं वो प्रेस करूँ तो मेरे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो मैं अपने दिमाग को उन सब चीज़ों से क्यों फिल करूँ जो मेरे पास बैठे लोग ही मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ों पे अपना दिमाग लगाऊंगा। तो यही एक छोटी सी स्टोरी ऑथर हमें बताते हैं जो एंड्रयू कार्नेगी ने की थी। और एंड्रयू कार्नेगी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और ये चीज़ें आप भी अप्लाई करके अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रख सकते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी गोल्स की तरफ वर्क कर सकते हैं। तो होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और इसे उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करनी है। और अगर आप इस बुक की पूरी नॉलेज जानना चाहते हैं तो इस बुक को आप पढ़िए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इन डेप्थ पूरा जानना चाहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच इट्स अ वेरी नाइस बुक। और इसके जो अगले फोर्थ तो मैंने आपको बताया दिया, फिफ्थ और सिक्स जो प्रिंसिपल्स है जो है इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। सो तब तक आप इन प्रिंसिपल्स को प्लीज़ अप्लाई कीजिए, वर्क करना शुरू कीजिए। शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएगी, पर इट्स वर्थ इट। एंड सी यू ऑन द अदर साइड। लव यू ऑल। सीजन वन एपिसोड 4। Hey guys, welcome to the podcast of Be For Billionaires. This is a podcast specially dedicated for the people who want to achieve financial independence in their life. So, कैसे हैं आप? जो मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको प्रिंसिपल दिए थे, क्या आपने वो अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं? और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ भाई उसको जाके अप्लाई करो, तभी तो रिजल्ट्स दिखेंगे, तभी तो वो मैजिक आएगा आप में भी, और तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो, इधर मैं आपसे वही फिफ्थ स्टेप की बात करने वाला हूँ। बाकी पिछली एपिसोड में मैंने आपको बाकी फोर स्टेप्स तो बताई दी थी, अब फिफ्थ स्टेप्स में जो आपको बताने वाला हूँ वो जो आपको रिच की तरफ लेके जाएगी वो है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन से मैं आपको एक कोट करना चाहूँगा कि इमेजिनेशन से बहुत ही अच्छा एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब हम सभी आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में इमेजिनेशन है। तो ऑथर कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो होती है जैसे जो पास्ट आइडिया से, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे फॉर्म होती है। जैसे पास्ट आइडियाज़ आपने देखा होगा फेसबुक का, तो आप ये देखेंगे कि अब मैं फेसबुक में क्या इनोवेशन ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए होंगे कुछ चीज़ों को लेके अच्छे नहीं होंगे, जैसे लर्निंग का भी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ऑनलाइन पे आ रहा है पूरा, तो ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आप कुछ नई चीज़ें बना रहे हो। और दूसरी टाइप ऑफ इमेजिनेशन होती है वो है क्रिएटिव, जो मतलब आज से पहले तक अभी नहीं हुआ है, आप पहले होंगे उस चीज़ को करने वाले। सो दो टाइप की इमेजिनेशन होती है। तो ऑथर कहते हैं कि हमें दोनों ही टाइप ऑफ इमेजिनेशन की ज़रूरत चाहिए, एक तो सिंथेटिक और एक क्रिएटिव। सो इसके लिए ऑथर हमें जो बताते हैं वो है कि हमें दोनों को अलग अलग एनालाइज करना है, और जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसको इन्हांस करना है सिंथेटिक की मदद से। तो मतलब जो भी हमारे पास्ट आइडियाज़ है, मतलब जितने भी आइडियाज़ अपना बिजनेस आइडियाज़ है, जो भी आइडियाज़ आपने सुने हैं वो आपने सुने हैं, उससे आपकी सिंथेटिक इमेजिनेशन फॉर्म होती है। पर आपको उस सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज़ करके आपको नए क्रिएटिव इमेजिनेशन में लाना है, और अपनी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग रखनी है जो मतलब कुछ भी सोच सकें, कि मतलब हमारी कोई लिमिटेशंस ही ना हो सोचने की, बिल्कुल बियॉन्ड एवरीथिंग हम बिल्कुल अच्छे से सोच सकें। तो इससे क्या होगा, हम ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकेंगे जो ना आज तक हुई है ना ही होगी। तो इससे हम बहुत हमें एज मिलेगा, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो वहीं से आएंगे, हमारी जो इमेजिनेशन है उसका ही आउटकम निकलेंगे। तो ऑथर यही बताना चाहते हैं इमेजिनेशन से कि अपनी इमेजिनेशन में कोई बाउंड्रीज नहीं आनी चाहिए, और जितना बड़ा हम सोचना चाहें हम उतनी बड़ी सोच रखें। और ये है कि हमें कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से वो कि मतलब हमें जब तक अच्छा आइडिया नहीं आएगा, बिल्कुल यूनिक आइडिया नहीं आएगा, तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। ऑथर ये कहते हैं कि मतलब अच्छा है अगर आपको उसी आइडिया में कुछ इम्प्रूवमेंट आके आप उसको क्रिएट करते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल बियॉन्ड ही पहली स्टेप में आने लगेंगे। धीरे धीरे करके आपको बिल्कुल बियॉन्ड वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लगेंगे, और अपनी इमेजिनेशन में बिल्कुल भी ये नहीं रखना है कि मतलब मेरे को बिल्कुल ही यूनिक इंसाइट मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इम्प्रूवमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जो पुराने आइडियाज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट से भी आप अपने बिजनेस, या उसको वैसे मोस्टली तो जो इंडिपेंडेंस गेन करेंगे वो बिज़नेस ही बिल्ड करेंगे, तो मैं बिज़नेस को ही पकड़ के चलता हूँ, तो अपने बिज़नेस को उसी उस पर बिल्ड करना है। और एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को एनहांस कर सकते हो, वो है कि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करके। सो यही था जो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यही था। वैसे इस चीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने जहाँ तक आपको बताया वो उसमें पूरा कवर हो गया है, और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था ये चैप्टर। तो मैं जो अगली स्टेप है वो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा, क्योंकि एक बार में इतना सारा डोज लेना मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब फॉर यू कि आप पूरी तरीके से उसको अप्लाई कर सके। तो हर एक स्टेप के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको, हर एक स्टेप पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल ही प्रो लेवल के बंदे हैं तो तीनों पांचों चारों सारी स्टेप्स को एक साथ इंटीग्रेट करके पुट टू यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, पर इसके लिए आपको थोड़ी हार्डवर्क ज़्यादा लगेगा। सो अभी का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्गेनाइज जो प्लान जो मैं इसमें इंटीग्रेट करने वाला था पर मैं नहीं कर पाया, वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और प्लीज़ इन स्टेप्स को अप्लाई किए, ये वर्क करते हैं। और ये बुक जिन्होंने लिखी है उन्होंने बहुत चुनिंदा ऐसे बिलियनर्स ऐसे लोगों को उठाया था और उन पर रिसर्च करके ये बुक लिखी थी कि उनमें ये क्वालिटीज़ देखी गई है, तभी वो आपको बता रहे हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और शेयर कर दीजिएगा जिसको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करनी है, और आप भी इन स्टेप्स को अप्लाई किए। और सी यू ऑन दी अदर साइड, लव यू ऑल।